பூரணான் பூரணான் அபாரான் சாந்தானும் கனானும் அச்சலானும் துருவானும் நித்யானும் புதஸ்வரூபானும் ஞானஸ்வரூபானும் ஆனந்தியானந்த ஆனந்தியம். ஆனந்தியான சப்த காம பரிபூர்ண ஹே. ये आनंद में जो परमात्मा का स्वरूप है ये निराकार है, आनंद के कोई आकार नहीं होता। मानो हम सब कोई आनंद के सागर के मां डूबे हुए हैं, नेत्रों को बंद करके देखते हैं तो नीचे ऊपर बाहर भीतर सब जगह आनंद ही आनंद परिपूर्ण हो रहा है, बड़ी बारी शांति परिपूर्ण हो रही है, मन में बुद्धि में इंद्रियों में नीचे ऊपर बाहर भीतर जो शांति प्रतीत होती है ये परमात्मा सही है। अरे जो चेतनता ज्ञान की बाहुलता जो प्रतीत होती है ये भी परमात्मा से ही है, क्योंकि परमात्मा शांतिमय है, आनंदमय है, ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो नेत्रों को बंद करने से ये बात मानो प्रत्यक्ष प्रतीत होती है। आप ध्यान देकर के देखें कैसी प्रसन्नता हो रही है, कैसी शांति हो रही है, कैसा आनंद हो रहा है। तो भगवान सब जगह के बीच के वहां समभाव से निराकार रूप से विज्ञानानुगम रूप से परिपूर्ण हो रहे हैं, और यही भगवान समझो कि आपने सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं। पर समझो तो सारे संसार में महान प्रकाश प्रतीत होता है, नेत्रों को बंद कर लेने पर भी सफेद प्रकाश सब दुनिया के बीच के वहां सारी दुनिया सचंदन हो जाती है, एक प्रकार से प्रकाशमय हो जाती है। किसी को बुलाते हैं तो उसका ना उच्चारण करते हैं, कोई मुझको बुलाता है तो मेरा ना उच्चारण करके पुकारता है तो झट में रुक जाता हूँ और देखता हूँ कौन बुलाता है, तब बुलाने वाले के पास जाता हूँ। तो भगवान का आह्वान करना पुकारना बुलाना एक ही बात है। तो कैसा भगवान का स्वरूप है कि अलौकिक है, कि देखो एक प्रकार से ये भी भगवान का निराकार स्वरूप है। जो विज्ञानान घन सप्तम ज्ञानंतम ब्रह्म विज्ञानान घन ब्रह्म, ये सप्तम ज्ञानंतम ब्रह्म जो परमात्मा जो है यही संघ समझो कि सज्जु के आदि के बीच के माँ भगवान विष्णु के रूप से प्रकट हुए थे। तो उनका हम भीतर से आह्वान करते हैं आनंदमय 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 आनंदियां सब्यों में परिपूर्ण हो। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय आनंदमय आनंदमय। देखो कैसा सम और शांति में प्रकाश परिपूर्ण हो रहा है। ये जो महान जो प्रकाश है इस प्रकाश के पुंज जो है वही भगवान विष्णु है। आकाश के बीच के माँ भगवान से विराजमान हो रहे हैं, मानो हमारे से थोड़ी दूर के ऊपर चार पांच हाथ की दूरी के ऊपर भगवान मानो एकदम प्रकट हो गए हैं। भगवान का स्वरूप जो है तो मन से देखना चाहिए, नेत्रों को बंद करके और आकाश के वहाँ प्रत्यक्ष के वहाँ भगवान के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। भगवान का स्वरूप करीब लंबा जो है 5-5.5 फुट है और चौड़ा करीब 1.25 फुट है। ऐसा भगवान का स्वरूप आकाश के बीच के वहाँ विराजमान। भगवान का जो विग्रह है बहुत ही सुंदर है और बहुत आकर्षण करने वाला और बहुत ही एक प्रकार से थी उनका समझो की नील वर्ण होते हुए भी सफेद प्रतीत होता है। कारण यह है प्रकाश महान होने से प्रकाश सफेद है, प्रकाश की सफेदी के कारण से भगवान का उज्जवल जो वर्ण है सफेद जो वर्ण है ऐसा प्रतीत होता है कि जिसके मानो नील रंग की झलक हो है, ऐसा एकदम चमचम चमक रहे हैं। भगवान का स्वरूप जो है दिव्य है अलौकिक है। ये हम लोगों के जैसे पार्थिव शरीर नहीं है, हार्डमांस का शरीर नहीं है, ये दिव्य शरीर है। शंख चक्र सक्रीट कुंडलं सपीत वस्त्र सरसीर क्षण सहार वक्षा स्वर्गोत्सव नमामि विष्णु तीर्था चतुर्भुजं। कैसा आपका स्वरूप है कि शंख और चक्र सहित और कैसा है कानों में कुंडल और मस्तक के ऊपर मुकुट सक्रीट कुंडलं कुंडल और क्रीट के सहित क्रीट माने मुकुट सपीत वस्त्र माने पीत वस्त्र के सहित पीताम्बर पहरे हुए सरसीर क्षण जिनके नेत्र कमल के पते की माफक आकृति वाले कमल के पुष्प की माफक खिली हुई और सहार बक्षा संकोष वसी बक्षस्थल जो है छाती जो है हृदय उसके वहाँ श्री लक्ष्मी जी को चिन्ह है, उसके ऊपर भृगु जी की लता को और कोष्ठ मणि धारण करके है। ऐसे चतुर्भुज भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। சசங்க சக்கரம் சக்கீத குண்டன் சபீத வஸ்தம் சரசீ துவேக்ஷணம் ஷஹார வக்ஷா சர்கோஸ்வத்யன் நமாமி விஷ்ணு சிறுசா சத்ருபுஜம். ஐசே சத்ருபுஜம், ஐசே சத்ருபுஜ் பகவான் விஷ்ணு கமன் சிறுசே சாஷ்டாங் நமஸ்கார் கரே. பகவான் மானோ ஹமாரே சாமனே அப்படி விராஜமான ஹோ ரே ஆகாஷ் கே பீச்மா உன்கா பிரகாஷ் சாரி துனியாமே ஃபைலா ஹுவா ஹே. ஜெசே பூர்ணிமா கே சந்திரமா கா பிரகாஷ் சாரி துனியாமே ஃபைலா ஹுவா ரஹதா ஹே. சந்திரமா ஆகாஷ் மே ஹே பஹுத் தூர் பர ஹே, பர் யே ஹம் லோகோ கே இசி கமரே கே மா பஹுத் ஹி நஜ்தீக் ஹே. பகவான் எக்தம் அப்படி சாமனே கரே உன்கே சரண் படி கோமல் ஓர் பஹுத் ஹி சுந்தர் ஹே. ஓர் ஆஹா வைசே பகவான் கி உங்கலியா ஓர் உங்கலியோ கே ஊபர் நாக்குனோ கி ஜோதி எக்தம் சமக் ரஹி ஹே. சரணோ கா ஜோ தல்வா ஹே பகவான் ஆகாஷ் மே ரஹே தே உன்கே நீச்சே கா பாக் ஹே சோ திக் ரஹா ஹே. பகவான் கே சரணோ கே ஜோ அங்கூட்டே ஹே உன்மே சக்கர் கா சிந்த ஹே, வான சக்கர் கி ரேகா ஹே ஓர் உங்கலியோ கே வான சங்க கி ரேகா ஓர் பகலி ஜோ ஹே உசே உஸ்கி நீச்சே கே பீச் கே வான தஜா ஜோ ஹே அங்குஷ் ஜோ ஹே பஜர் ஹே கதா ஜோ ஹே ஜவ ஜோ ஹே இன்கி ஏசோ சின் ஹே பகவான் கே ஓர் ரேகா ஓர் அனேக பிரகார் கே சுவே சுந்தர் சின் ஹே. பகவான் மானோ ஓர் நீச்சே கோ ஆகே ஊபர் கா பாக் பி திக்னே லகா. தோ பகவான் கே சரண் பஹுத் ஹி சுந்தர் சம்கீலே கோமல் சரணோ கோ சூனே சே சரீர் மே ரோமாஞ்ச உடதே ஹே ஓர் ஆனந்த் கி சுந்தர் கி லஹரே சரீர் மே உடதே ஹே. ஜேசே சாகர் கே பீச் கே மாதிரி ஜல் கி லஹரே உடதி ஹே ஆனந்த் கி லஹரே உடதி ஹே. பகவான் கே ஜேசே சரண் ஐசே தோனோ பிண்டி ஓர் தோனோ கோடே தோனோ ஜகா ஹே ஓர் பிதாம்பர் பரே ஹுவே ஹே ஓர் பஹுத் ஹி சுந்தர் பிதாம்பர் சம்கீலா ஓர் ஜீணா மான சூக்ஷ்ம ரேஷ்மி ஜிஸ்மே பகவான் கா அங்க ஸோ சமக்தா ஹே. கமர் பகவான் கி பத்லி ஹே நாபி கம்பீர் கமர் கே புஷ்ப கி மாஃபக் ஓர் உதய கே ஊபர் தீன் ரேகா ஹே உஸ்கோ திரிவேணி கேதே ஹே. பகவான் கே சார் புஜா ஹே ஜோ அஜான் பாஹு மான சாரோ ஹி புஜா ஹே கோடோ தக் லம்பி ஓர் பஹுத் ஹி சுந்தர் தோ புஜா நீச்சே கோ பசரி ஹுயி ஹே தோ புஜா ஊபர் கோ உடி ஹுயி ஹே. நீச்சே கி தோனோ புஜாவோ மே கதா ஓர் பத்ம ஹே ஊபர் கி தோனோ புஜாவோ மே சங்க ஓர் சக்கர் ஹே. சாரோ ஹாத்தோ மே அங்கூட்டி பரே ஹுயி ஹே சாரோ ஹாத்தோ மே பாதுபந்த் பாந்தே ஹுயே கடா பரே ஹுயே ஹே ஓர் சாரோ புஜா ஊபர் சே மோட்டி நீச்சே சே பத்லி பஹுத் ஹி சிக்னி ஓர் சம்கீலி ஓர் சுந்தர் ஓர் கோமல் ஜிஸ்கோ சுனே சே சரீர் மே பாரம்பார் ரோமாஞ்ச உடதே ஹே. பகவான் மாலா தாரண கரக்கி ஹே ஏக் ஜோ நாபி சே பி நீச்சே தக் லம்பி புஷ்போ கி மாலா பன் மாலா ஜிஸ்கோ கேதே ஹே தூசரி ஓர் மனாலி தக் ஓர் கலே மே மோதியோ கி மாலா ரத்னோ கி மாலா பி பகவான் நே தாரண கரக்கி ஹே ஓர் சந்திர ஹார் பரே ஹுயே ஹே ஓர் கோஸ்து மணி ஓர் ரத்ன ஜரீர் கணிகா ஸோ தாரண கரக்கா ஹே ஓர் ஹிருதய ஸ்தான கே வா ஸ்ரீ பகவதி லக்ஷ்மி ஜி கா சின் ஜோ பிரத்யக்ஷ கி மாபக் ஜேசே தர்பண மே முக தேக்னே கி மாபக் திக்தா ஹே உஸ்கே ஊபரி பாக் கே மா பர்கு ஜி கி லதா கா சின் ஹே ஓர் சாதி ஜின் கி விசால் சோடி ஓர் புஜா ஜின் கி லம்பி ஓர் கந்தா ஜின் கா புஷ் ஹே கிரீவா சுந்தர கலா ஏக் பிரகார் சே பஹுத் ஹி அப்னே சுசோபித் கண்ட ஜின் கி சங்க கி மாபக் சோடி சுந்தர ஹே ஓர் அவஸ்த ஜோ ஹே ஸோ பிம்ப ஃபல் கி மாபக் சமக்தே ஹே லால் மணி கி மாபக் கஹியே ஓர் சுஞ்சோ கி தாந்தோ கி பங்க்தி மானோ மோதியோ கி பங்க்தி ஓர் நாசிகா தி சுந்தர ஹே பகவான் ஹஸ்தே ஹே மானோ குலாப் கா புஷ்ப கிலா ஹுவா ஹோ ஏசே பகவான் கா முக கிலா ஹுவா ஹே யா கமல் கா புஷ்ப ஜேசே கிலா ஹுவா ஹோ. பகவான் கே தோனோ கபோல் யானே கால் ஜோ ஹே ஏக்தம் கூபி சம்கீலே ஹே ஓர் உன்கே ஊபர் குண்டலோ கி ஜோ கானோ மே குண்டல் பேர் ரக்கே உன்கி ஆபாஸ் தோ படதி ஹே ஓர் உன்மே குலாபி ரங் கி சாத் மே ஜலக் ஹே ஓர் உஸ்கே மா சுஞ்சோ கி நீல் ரங் கி ஜலக் தோ ஹை கி பகவான் ஸ்வரூப் கி பகவான் கைசா ஹே ஓர் மகான் பிரகாஷ் ஹே தோனோ கான் விஷால் கானோ மே மக்ராக்கிருத ரத்ன ஜடித் சுவர்ண கே குண்டல் பரே ஹுயே ஹே ஓர் தோனோ நேத்ர ஏக்தம் குலே ஹுயே ஹே ஜோ சதாய் குலே ரஹதே ஹே கபி பகவான் பலக் நஹீ மார்தே ஓர் பிரேம் சே தேக்தே ஹே மானோ நேத்ரோ கே துவாரா பிரேம் கி வர்ஷா கர்தே ஹோ. நேத்ரோ கி ஆக்ருதி கமல் கே பத்தே கே சமான் ஓர் பகவான் கே தோனோ நேத்ர கமல் கே புஷ்ப கே சமான் கிலே ஹுயே நீல்வர்ண கே புஷ்ப கே சமான் தோனோ கமல் மானோ கிலே ஹுயே ஓர் தோனோ நேத்ர கமல் கே புஷ்ப கே சமான் அப்பனா மன் ரூபி பவுரா மானோ உஸ்கே சாரோ தரப் கே பீச் கே மா சம்ஜோ கி ஆனந்த் கா அனுபவ கர் ரஹா ஹே. கபி தோ மன் முகார்பிந்த் கோ தேக்தா ஹே ஓர் கபி நேத்ரோ கோ கபி கால் கோ தோ பகவான் கா சேரா தேக் தேக் கர்கே மானோ அசோ மன் முக்த ஹோ ரஹா ஹே. பகவான் நேத்ரோ சே हम लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं, गुणों की वर्षा करते हैं। भगवान में अनंत गुण है, दया जो है, क्षमा है, शांति है, समता है, संतोष है, सरलता है, ज्ञान है, वैराग है, इस प्रकार से अनंत भगवान में गुण है। भगवान सब कोई को समभाव से देखते हैं, मानो समता की वृष्टि करते हो, प्रेम भाव से देखते हैं मानो प्रेम की वृष्टि करते हो, दया भाव से देखते हैं मानो दया की वृष्टि करते हो, दया प्रेम और ज्ञान की मानो वर्षा कर रहे हैं और हम लोग उसे क्षमा एकदम मुग्ध हो रहे हैं। मानो कोई ज्ञान की आनंद की बाढ़ आ गई हो, प्रेम की बाढ़ आ गई हो और उसमें हम लोग मगन है सब कोई। भगवान एक प्रकार से अपने हम लोगों के ऊपर गुणों की वर्षा कर रहे हैं। भगवान के हृदय में गुणों का जो समूह है और नेत्रों के द्वारा उनका विकास हो रहा है और भगवान उनका विकीर्ण कर रहे हैं। गुण तो निराकारी होते हैं, इस वास्ते ऐसे जो अपने गुणों को भगवान विस्तार कर रहे हैं हमारे मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, शरीर में, रोम रोम के मां भगवान के विकीर्ण किए हुए गुण परिपूर्ण हो गए हैं, व्यापक हो गए हैं। हम देखते हैं अपने में क्षमा, शांति, समता, संतोष, सरलता, ज्ञान, वैराग आदि अनंत गुण है, सब परिपूर्ण हो गए हैं। मानो भगवान के हृदय से, भगवान के नेत्रों के द्वारा निकल करके हमारे नेत्रों में प्रवेश होकर के हमारे सारे शरीर में मानो व्यापक हो रहे हैं। हम भगवान के नेत्रों को अपने नेत्रों से देख रहे हैं, एक तक देख रहे हैं, भगवान हमको देखते हैं और हम भगवान को देखते हैं। भगवान के नेत्र प्रफुल्लित हो रहे हैं, खिले हुए हैं, मानो एक प्रकार से थी भगवान का जो स्वरूप है प्रेम की भगवान मूर्ति हो। भगवान की भौहें बड़ी सुंदर, प्रकृति भी बहुत ही सुंदर है और ललाट चमक रहा है, उस ललाट के ऊपर श्रीधारी तिलक हो रहे हैं और चीज के ऊपर काले रंग के केस, वे गुड़े हुए केस और उस केसों के ऊपर रत्न जड़ित स्वर्ण का मुकुट है तो भगवान ने बांध रखा है। भगवान के मुखारविंद के चारों तरफ प्रकाश है तो खिला हुआ है, जैसे सूर्य की किरण खिली हो। सूर्य गर्म है और भगवान बहुत ही शांतिमय है, आनंदमय है, रसमय है, प्रेममय है। भगवान की वाणी भी बहुत ही सुंदर और प्यारी है, कानों के लिए भगवान की वाणी अमृत के समान प्यारी है और अर्थ युक्त भाव युक्त प्रेम करके परिपूर्ण ऐसी भगवान की सो वाणी। भगवान बोलते हैं तो भगवान के जो होठ हालते हैं वे एक जादू का सा काम करते हैं, से प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, आनंद का प्रादुर्भाव होता है। भगवान के मन सुगंध जो है वो भी अलौकिक अमृतमय है। भगवान के मां जो गंध आती है वो नासिका के लिए अमृत के समान प्यारी लगती है। भगवान का जो स्पर्श है वो हाथों के लिए अमृत के समान है। भगवान का जो दर्शन है हमारे मानसिक नेत्रों के लिए अमृत के समान है। मानो मैं नेत्रों के द्वारा भगवान को पी जाऊं। भगवान के दर्शन, भाषण, स्पर्श और वार्तालाप और चिंतन ये सभी अमृतमय है, रसमय है, आनंदमय है, प्रेममय है। भगवान का दर्शन, भाषण, स्पर्श ये सब मधुर है। भगवान के चरित्र मधुर, भगवान की मूर्ति मधुर, भगवान की वाणी मधुर, भगवान के सभी मधुर होने से भगवान को माधुरी मूर्ति कहते हैं। या भगवान का जो स्वरूप है या रूप माधुरी है, इनका स्वरूप एक अद्भुत अलौकिक है, जिसको देख करके कामदेव भी लज्जित हो जाता है भगवान के रूप माधुरी को देख। देखो एक कैसा मधुर स्वरूप है, कैसा अलौकिक है, इसमें बड़ी भारी आठन शक्ति है। भगवान मानो हम लोगों के ऊपर प्रेम की आनंद बार बार नेत्रों से मानो देखते हैं तो एक ज्ञान और आनंद और प्रेम ऐसे बरसाते हैं, देख करके हम सब मुग्ध हो जाते हैं। कामदेव से बढ़कर के सुंदरता है, चंद्रमा से बढ़कर शांति, पति से बढ़कर के क्षमा, एक क्या ऐसे अनंत गुण हैं। परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्र परम भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदि देव अरुंधुम। आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो, सब कोई ऋषि लोग आपको शाश्वत पुरुष कहते हैं, दिव्य पुरुष कहते हैं, आपको आदि देव अजय और सर्वव्यापी कहते हैं। आप ही हमारे सब कुछ हो, तुमेव माता च पिता, तुमेव तुमेव बंधु सखा, तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं, तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव। हे देव देव, आप ही हमारे माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, सखा हो, धन हो, विद्या हो और भी जो कुछ आप हमारे सर्वस्व हो आप प्रभु, हम आपसे यही चाहते हैं कि जैसा हम ध्यानावस्था के माँ आपका दर्शन कर रहे हैं ऐसा ही दर्शन हम प्रत्यक्ष चाहते हैं, फिर कभी आपसे हमारा वियोग न हो, हम सदा ही आपके पास में रहें। प्रभु आप में हमारा परम प्रेम हो, अनन्य प्रेम हो, विशुद्ध प्रेम हो, आप में हमारी परम श्रद्धा हो, आपको छोड़ करके और किसी में न हमारी श्रद्धा हो न प्रेम हो। प्रभु आपको आए बहुत समय होया, अब मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ, बारम्बार आपको नमस्कार करता हूँ, साष्टांग नमस्कार करता हूँ, बारम्बार भगवान को साष्टांग नमस्कार करने के अब भगवान की पूजा करने का विचार किया गया है। हम क्या देखते हैं कि हमारी दाईं तरफ के माँ एक मलयागिरी चंदन का तख्त है जो स्वर्ण से मढ़ा हुआ और रत्नों से जड़ा हुआ, ऐसा ही तख्त एक बाईं तरफ के बीच में वो खाली है, कोई दाईं तरफ के तख्त के ऊपर सारी सामग्रियां परा से देवताओं ने जाकर के रखी है। तख्त 3 फुट चौड़ा और 6 फुट लंबा है और उसके ऊपर पंक्ति के अनुसार सब सामग्रियां सजाई हुई है। पहली पंक्ति के बीच के माँ समझो कि एक लोटा 3 गिलास और 3 कटोरे ला करके रखे हैं, स्वर्ण के बर्तन और गंगा जल से भरे हुए, उसमें दिव्य सुगंधी दी गई है। भगवान जो है इस प्रकार से हमारे सामने विराजमान हैं और हम खड़े होकर के उनकी पूजा करते हैं। भगवान का जो स्वरूप है वो भी आपने समझो कि हमारे भाव से श्रद्धा से और हमारा भी शरीर मानसिक है और पूजा की सामग्री भी सम्मानसिक है और हम जो क्रिया करते हैं वो भी सम्मानसिक। भगवान स्नान करके आए हैं, वस्त्र पहन करके आए हैं, यज्ञ पवित्र धारण करके आए हैं, ये स्नान की आवश्यकता नहीं, भगवान के चरण धोने के लिए जो पाद्य जो है चरण धोने का जल वो हम दे रहे हैं। एक कटोरा जो है गंगा जल का भरा हुआ उसके माँ तेसर कुमकुम की सूरी और कर्पूर आदि सुगंधित द्रव्य उसमें मिलाए हुए हैं, ऐसा जो जल है उसे को लेकर के हम भगवान के चरण धो रहे हैं, बाएं हाथ से जल ढालते हैं और दाएं हाथ से भी भगवान के चरणों को धो रहे हैं और धोने के समय ये मंत्र बोलते हैं, ओम पादयो पादं समर्पयामि नारायणाय नमः, भगवान नारायण के लिए मेरा नमस्कार हो, मैं ये चरण धोने के जल से आपका चरण तो धो रहा हूँ। फिर वो प्याला जो खाली हो जाता है तो बाहर की तरफ बाएं तरफ में रख देता हूँ और एक रुमाल को लेकर भगवान के चरणों को पूछ कर उसको भी मैं बाएं तरफ रख देता हूँ, अपने हाथों को पवित्र लोटे के जल से धो लेता हूँ। हाथ धोने के बाद फिर दूसरा बर्तन लेता हूँ जिसको अर्घ कहते हैं, एक प्याले के बीच के माँ स्वर्ण के प्याले में गंगा जल लाकर रखा हुआ है, उस प्याले को लेकर के भगवान को अर्घ दे रहा हूँ और भगवान छोड़ देते हैं। नीचे एक स्वर्ण का थाल है उसमें जाकर के वो इकट्ठा हो जाता है, उसी में वो चरणों का जल भी जाकर इकट्ठा हो गया, ये जल भी। अब प्याला खाली होने पर मैं बाएं हाथ की तरफ में जो चौकी मार लेता हूँ, अब जो है मैं क्या देखता हूँ कि आसन के योग तीसरा प्याला लेकर जल का जिसके माँ तीसरे तुम को मिले हुए हैं, सब सुगंधित द्रव्य मिले हुए हैं, उस प्याले को अपने हाथ में लेकर भगवान को आसन कराता हूँ, भगवान के हाथों को धुला करके और मैं भगवान को जल देता हूँ, भगवान दें हाथ से 3 बार आसन करते हैं और मैं आसन करने के समय ये मंत्र बोलता हूँ, ओम आत्मनियम समर्पयामि नारायणाय नमः, भगवान नारायण के लिए मेरा नमस्कार, मैं आपको आसन कराता हूँ। इस प्रकार से आसन करा करके भगवान का फिर हाथ धुला देता हूँ, हाथ धुला करके वो प्याला बाईं तरफ में रख करके रुमाल से भगवान के हाथों को पोंछ करके वो रुमाल भी बाईं तरफ में रख देता हूँ और फिर मैं क्या देखता हूँ एक स्वर्ण की कटोरी के बीच के माँ भगवान के तिलक करने के लिए चंदन घस करके रखा है, उसमें भी केसर कुमकुम की सूरी और कर्पूर आदि शामिल है, उस कटोरी को बाएं हाथ में थाम करके दाएं हाथ से भगवान के मस्तक के ऊपर मैं खूब सुंदर सो तिलक सो कर रहा हूँ और ये मंत्र बोलता हूँ, ओम गंधम समर्पयामि नारायणाय नमः, भगवान नारायण के लिए मेरा नमस्कार हो, मैं आपके मस्तक के ऊपर गंध लगाता हूँ, गंध लगाने के बाद के बीच के मैं उस कटोरी को बाईं तरफ रखकर अपने हाथों को धो लेता हूँ तो अपने हाथों के माँ भी सुगंध सो खूब बढ़िया सो आ रही है। क्या देखता हूँ कि एक कटोरी के माँ मोती जो है सो एदीन मोती ला करके रखे जिसका जिसको संस्कृत में मोटा फल कहते हैं, उस कटोरी को बाएं हाथ में थाम करके दाएं हाथ से भगवान के मस्तक के ऊपर मैं मोती ऐसा लगा रहा हूँ और ये मंत्र बोलता हूँ, ओ मोटा फलम समर्पयामि नारायण, भगवान नारायण के लिए मेरा नमस्कार हो, मैं आपके मस्तक के ऊपर जो है सो मोती ऐसा लगा रहा हूँ। अब क्या देखता हूँ कि एक ढूंढे के माँ बहुत ही बढ़िया पुष्प जा करके रखे हैं, जो सुवर्ण के मापक जिनका रंग है और सुगंध भी है, और भी अनेक प्रकार के पुष्प जा करके रखे हैं, गुलाब के और कमल के और चंपा के आदि नाना प्रकार के, उन पुष्पों की अंजलि भर करके और तुलसी दल साथ में लेकर के भगवान के चरणों के बीच के माँ तुलसी दल के सहित पुष्प छोड़ता हूँ और ये मंत्र बोलता हूँ, ओम पतंग पुष्पम समर्पयामी नारायणाय नमः, भगवान नारायण के लिए मेरा नमस्कार हो, ये पत्र पुष्प जो है तो आपके चरणों में मैं अर्पण करता हूँ, और फिर दूसरी अंगड़ी भर करके भगवान के मस्तक के ऊपर मैं पुष्प रस छोड़ रहा हूँ। इसके बाद में एक सुंदर पुष्पों की माला बहुत ही एक प्रकार से पहले से जाकर रखी है, उसको दोनों हाथों में थाम करके और भगवान के मुख के ऊपर करके मन में पहा रहा हूँ, और प्रेम के मन मुग्ध होकर के वरमाला जो है जैसे पढ़ाई जाती है ऐसे भगवान हमारे वर्णन माने वर्णन करने के योग हैं, हमारे स्वामी बनाने के योग हैं, ऐसे भगवान के गले में मैं माला पढ़ा रहा हूँ और बोल रहा हूँ माला समर्पयामी नारायण, मैं भगवान नारायण के लिए मेरा नमस्कार हो, ये माला जो है तो मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। अब क्या देखता हूँ कि एक धूप छेने के योग धूपिया जिसके मैं अंगार एकदम प्रज्वलित हो रहा है, निर्धूम अग्नि उसके माँ प्रज्वलित हो रही है, और पास के बीच के माँ एक कटोरी के माँ धूप का चूर्ण पड़ा है, उसको उठाकर वहाँ डाल देता हूँ, और उसकी सुगंधित चारों तरफ फैल रही है, उस धूप के माँ केसर कुमकुम की सूरी और कपूर भी शामिल है, उसको लेकर के भगवान को मैं धूप दे रहा हूँ और ये मंत्र बोलता हूँ, और धूपन समर्पयामी नारायण, मैं भगवान नारायण के मेरा नारायण के लिए मेरा नमस्कार, ये धूप मैं आपको देता हूँ, और उस धूप को मैं बाई चुकी के कुणे के ऊपर उस धूपिये को रख देता हूँ। क्या देखता हूँ कि एक दीपक खड़ी बाती का जो कि लाकर के कटोरी में रखा हुआ है और वो प्रज्वलित हो रहा है, वो दें हाथ में लेकर के और भगवान को दीपक दिखलाता हूँ और ये मंत्र बोलता हूँ, ओम दीपक दर्शयामी नारायण, मैं भगवान नारायण के लिए मेरा नमस्कार हो, ये दीपक मैं आपको दिखलाता हूँ, ऐसा कहकर के वो बाई तरफ की चोटी के कोने पर रख करके अपने हाथों को धो लेता हूँ, और अब भगवान के भोग लगाने की तैयारी हो जाती है। तो देवता लोग दो चौकी और जाकर रखते हैं, जो कि कैसी चौकी है कि वो मलयागिरी चंदन की चौकी और स्वर्ण से मंडी हुई और रत्नों से जड़ी हुई, जिनका नाप करीब 2.25 फुट चौड़ा 2.25 फुट लंबा है, एक चौकी के ऊपर आसन बिछाया हुआ है, तो भगवान बैठ जाते हैं, दूसरी चौकी खाली है, उस पर भोजन की सामग्री जिस थाल में, उस थाल को मैं भगवान के सन्मुख रखता हूँ, उस आधे थाल के माँ तो नाना प्रकार के पकवान है और आधे थाल के बीच के माँ व्यंजन माने नाना प्रकार की तरकारी है, उस थाल को रखता हूँ, ये मंत्र बोलता हूँ, ओम नैये दम समर्पयामी नारायण, मैं भगवान नारायण के लिए मेरा नमस्कार हो, और ये नैये जो तो आपके लिए मैं अर्पण करता हूँ। भगवान भोजन करते हैं, थोड़ा भोजन करके चुप हो जाते हैं, तो उस प्रसाद को बचे हुए प्रसाद को उठाकर बाईं चौकी पर रख देता हूँ, अपने हाथों को पवित्र जल से धोकर के और भगवान के हाथों को धोहा करके आसमन कराता हूँ, ये मंत्र बोलता हूँ, ओम आत्मनियम समर्पयामी नारायण, मैं भगवान नारायण के लिए मेरा नमस्कार हो, मैं आपको आसमन कराता हूँ, आसमन कराकर हाथ धुलाता हूँ, हाथ धुला करके भगवान के हाथों को पहुँच देता हूँ, रुमाल को बाईं तरफ रख देता हूँ, और उसके बाद के मैं क्या देखता हूँ कि एक छन्नी के बीच के मन जो है ऋतु फल सजाए हुए हैं, जिसके वहाँ अनार के दाने और अंगूर और केले की गिरी और भी जितने जो आजकल के समय के अनुसार एक प्रकार से ऋतु फल सजाए हुए हैं, उस चौकी को एक बड़े तोप के जल में धोकर उसके सामने रख देता हूँ, फिर उस चौकी पर उसे छोटी थारी को रखता हूँ जिसको शनि भी कहते हैं, उसमें सब ऋतु फल सजाए हुए हैं, ये मंत्र बोलता हूँ, ओम ऋतु फलंग समर्पयामी नारायण, मैं भगवान नारायण के लिए मेरा नमस्कार हो, ये ऋतु फल आपके अर्पण करता हूँ। उसके बाद के बीच के मैं जो है अपने हाथों को पवित्र जल से धो के और भगवान के हाथों को धुला करके पुनः आसमन कराता हूँ, ये मंत्र बोलता हूँ, ओम पुनः आत्मन समर्पयामी नारायण, मैं भगवान नारायण के लिए मेरा नमस्कार हो, मैं आपको फिर आसमन कराता हूँ, और बचा हुआ जो प्रसाद हो बाएं तरफ में रख देता हूँ, और उसके बाद के बीच के वहाँ एक प्रकार से उस जल के गिलास को भी बाएं तरफ में रख देता हूँ। उसके बाद में क्या देखता हूँ कि एक छन्नी में पहले से पान ला करके रखे हैं, जिसके वहाँ सुपारी और लौंग इलायची आदि सभी चीज उसमें मौजूद है, सुगंधित द्रव्य है, सोना और कैसा भी सब है, तो उसे उनको अपने थाली को हाथ में लेकर के भगवान के सन्मुख करता हूँ, भगवान उसमें लेकर के चबाते हैं, और मैं ये मंत्र बोलता हूँ, कुकी फलंग से ताम्रंग लौंग इलायची सहित समर्पयामी नारायण, में प्रकार से भगवान नारायण को नमस्कार करके पान लेकर के वो थाली को बाई सब्जी रख देता हूँ, फिर हाथों को धो करके भगवान का हाथ धुला के पुनः मुख सिद्धि के लिए आत्मन कराता हूँ। आत्मन कराने के समय ये मंत्र बोलता हूँ, तो पुनः आत्मन समी नारायण है नमः, भगवान नारायण के लिए मेरा नमस्कार हो, मैं फिर आपको आत्मन कराता हूँ। आत्मन करके फिर हाथ धुला करके और हाथों को पूछ करके रुमाल को बाई सब्जी रख देता हूँ। और फिर एक प्रकार से क्या देखता हूँ कि अब दक्षिणा का समय हो गया, तो दक्षिणा के लिए मैं अपने आप को भगवान के समर्पण कर देता हूँ और कहता हूँ प्रभु ये आपकी दक्षिणा आपको दी जाती है। मानो कुबेर ने अपने भंडार से ला कर रखे, जैसे कोई मुनीम जो है अपने मालिक के पास में ला करके रुपया देता है खर्च करने के लिए, ऐसे ही ये सब दक्षिणा भगवान की चीज भगवान को दी जाती है और सब सामग्री भी भगवान की, मैं भी भगवान का और ये सब भगवान की चीज है। किंतु उसे जैसे जग की पूर्ति बिना दक्षिणा के बिना तामस्य है, पूजा की पूर्ति बिना दक्षिणा के बिना तामस्य है, इसलिए भगवान को दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा देने के समय के वहाँ ये मंत्र से बोल रहा हूँ, दक्षिणा समर्पण नारायण है नमः, भगवान नारायण के लिए मेरा नमस्कार हो, ये दक्षिणा मैं आपको दे रहा हूँ। भगवान उसको लेकर के अर्थात के जो भक्त उसको दे देते हैं। अब आरती का समय हो गया, इस बात ऐसे की जो लेन है उसके वहाँ आरती की सब सामग्री सजाई हुई है पहले से ही। एक थाली है, थाली के भीतर में कटोरी है, कटोरी में कपूर एक प्रकार से प्रज्वलित हो रहा है, कटोरी के चारों तरफ मांगलिक द्रव है, जिस तरह कुमकुम किशोरी आदि अनेक प्रकार के मांगलिक ऐसे द्रव है, बिल पत्र बिल फल और द्रुवा और समझो कि पूजा की सामग्री सब उसके मस्त जाई है। उस थाली को लेकर के और दोनों हाथों में थाम करके भगवान की मैं आरती से उतार रहा हूँ। आरती उतार करके उस थाली को बाई तरफ में रख देता हूँ। फिर एक प्रकार से जो सामने भगवान की चौकी है उसको उठाकर और पवित्र जल से धोकर अलग खड़ी कर देता हूँ। और जो थाल जो है जिसमें चरणों का हाथ और हाथों का जल पड़ा वो थाल उठा के बाई तरफ की रख देता हूँ। और फिर समझो कि अब पुष्पांजलि का समय हो गया, तो पुष्प जाकर पलान से रखे कुछ पुष्पों की आंजलि भर करके और भगवान के मस्तक को बिछोड़ता हूँ। तो पुष्पांजलि के समय प्रणाम नारायण में पुष्पांजलि देकर के अब भगवान की समझो की पूजा होने के बाद हम लोग सब मिलकर के भगवान की स्तुति करते हैं और उपक्रमा देते हैं और बारम्बार भगवान को नमस्कार करते हैं। और एक भाई जो है सब कोई को अपने चरणाम दे रहा है, दूसरा भाई सबका हाथ धुला रहा है, तीसरा भाई सबको प्रसाद देता है, चौथा भाई फिर हाथ धुलाता है। इस प्रकार से सब कोई अपने भगवान का जो प्रसाद है चरणामत है ये लेकर के सब मुग्ध हो रहे हैं और फिर सब मिल करके भगवान की मानो परिक्रमा हम लोग दे रहे हैं और भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं। प्रभु आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु, आप ही महेश, आप ही सूर्य, आप ही चंद्रमा, आप ही आकाश वायु तेज जल पृथ्वी जो कुछ सब आप ही हैं। इस संसार के उपादान कारण भी आप हैं, निमित्त कारण भी आप हैं, आप ही संसार के रूप में प्रकट हुए हैं और आपने इस संसार की रचना की है, आप इसके वहाँ व्यापक होकर के सदा रहते हैं। जो कुछ यह संसार है तो आपको ही स्वरूप है। इस रूप को हम अपने हृदय में देखते हैं कि हमारा जो हृदय आकाश है वो बड़ा विशाल है, उसके भीतर के बीच के वहाँ पुष्पों की ढेरी है, उस पर शेष नाग जी विराजमान हो रहे हैं, उस शेष सज्जा के ऊपर भगवान विराजमान हो रहे हैं, भगवती लक्ष्मी उनके चरण से चाप रही है और उनकी नाभि से कमल निकल रहा है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान हो रहे हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विरजान गमनं वंदे विष्णु भयभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हाँ प्रभु का कैसा स्वरूप है, शांत जिनका आकार है शांताकारं भुजगशयनं माने शिष्य सज्जा के ऊपर विराजमान हो रहे हैं, इस वास्ते आप भूजे शरण पद्मनाभम आपकी नाभि से कमल निकला हुआ, इस वास्ते आपको पद्मनाभि पद्मनाभ कहते हैं और आपकी नाभि भी कमल के पुष्प के समान है, इस वास्ते भी आपको पद्मनाभ कहते हैं। सुरेशन सूर्य जो देवताओं के भी आप ईश्वर हैं, इस वास्ते सुरेशन विश्वाधारण सारे विश्व को आपने अपने संकल्प में धारण कर रखी है, इसलिए विश्वाधारण गगन सदृशम आकाश की जो आप निराकार रूप से संसार में व्यापक है, इस वास्ते गगन सदृशम मेघ वर्णम काले मेघ की घटा के समान समझो कि आपका श्याम वर्ण की आप में झलक है और प्रकाश की भी साथ साथ में झलक है, इस वास्ते सफेद और नील वर्ण मिलकर के जैसा एक श्याम वर्ण होता है ऐसा आपका स्वरूप है। लक्ष्मीकांतम आप लक्ष्मी के पति हैं, भगवती लक्ष्मी आपके चरणों को ऐसा छाप रही है। हंताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघ वर्णं शुभांगं आपके सारे अंग बड़े शुभ मंगलमय है और आपके नेत्र कमल के पत्ते के मापक आकृति वाले और कमल के पुष्प के मापक खिले हुए। योगी फिर ध्यान गमन योगियों के ध्यान में आने योग आपका स्वरूप है। वंदे विष्णु भय भयहरं सर्वलोकैकनाथं संसार के भव के भय को हरने वाले सब लोकी के स्वामी भगवान विष्णु को मैं सिर से नमस्कार करता हूँ। हमारे हृदय देश के बीच के माँ सुन लो कि भगवान के सब भक्तजन दिव्य स्तोत्र से स्तुति कर रहे हैं और भगवान के चारों तरफ मंडलाकार खड़े हैं और मैं भी उनके शामिल हूँ और सब कोई भगवान के गुणों का सुख कीर्तन कर रहे हैं। जन ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत सुनती दिव्य सही वेद सांग पद कर्मोपनिषदी गायंती अंग सामगा ध्यानावस्थित सदगते न मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां संगं विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। इस प्रकार से दिव्य स्तोत्रों से भगवान की सबको स्तुति कर रहे हैं और सभी भक्त हैं। भक्तों के बीच के माँ असुर असुर सुन जो की देवता और असुर और राक्षस किन्नर और नर मनुष्य और यक्ष पशु और पक्षी आदि सभी प्रकार के भक्त भगवान की दिव्य स्तोत्रों से स्तुति गा रहे हैं। मंडलाकार खड़े होकर के और प्रकवा भी देते जाते हैं और स्तुति भी करते जाते हैं। उनमें देवताओं के वहाँ समझो कि शिव और ब्रह्मा और इंद्र आदि और यक्षों के वहाँ कुबेर आदि और राक्षसों के बीच के वहाँ भविष्य आदि और आसुरों के वहाँ प्रह्लाद और बलि आदि और पक्षियों के बीच के वहाँ गरुड़ संपाति जटायु और कागसुण आदि और पशुओं के बीच के वहाँ हनुमान अंगद अरिक्षराज गांवंत सुग्रीव ये सब भगवान के भक्त सब शामिल हैं। मनुष्यों के बीच के वहाँ ध्रुव जो है अमरीश भीष्म राजा चौल अर्जुन आदि भगवान के बहुत से भक्त शामिल होकर के और दिव्य स्तोत्र से स्तुति करते हुए मंडलाकार खड़े हुए स्तुति करते हुए प्रकमा देते हुए और भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं और मैं भी उनके सामने हूँ। इस प्रकार से भगवान की झांकी भीतर में हो रही है। बाहर में देखता हूँ तो यही भगवान बाहर में वैसे ही विराजमान हो रहे हैं जैसे पहले थे। जहाँ हमारे नेत्र जाते हैं वहीं भगवान देखते हैं, जहाँ हमारा मन जाता है वहीं भगवान हमें देखते हैं। प्रभु प्रभु जिस प्रकार से थी ध्यानावस्था में आपके स्वरूप को देखता हूँ ऐसे ही स्वरूप का दर्शन साक्षात हम लोग करना चाहते हैं। यदि हम पात्र नहीं है, हम लोगों में प्रेम नहीं है, किंतु आप दया के सागर हैं, आप अवगुणों की तरफ नहीं देखते हैं, इसी के लिए हम आशा रख सकते हैं आपकी दया के और आपके स्वभाव को देख करके। जन अवगुण प्रभु देखने का हो दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भरत जी ने कहा है कि भगवान अपने दासों के दोस्त की तरफ नहीं देखते हैं। भगवान का स्वभाव बड़ा कोमल है और दीनों के बंधु हैं और हम लोग सब दीन हैं। सुना जाता है जिस समय के बीच के माँ भगवान प्रकट होते हैं उस समय के बीच के माँ उसके पहले ही शरीर में प्रसन्नता शांति और आनंद की सीमा नहीं रहती, रोमांच होने लगते हैं, वाणी गदगद हो जाती है, कंठ रुक जाते हैं और हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। उसके बाद में जब भगवान प्रकट होते हैं तब तो एकदम एक प्रकार से समझो कि वो उसको बड़ा आश्चर्य होता है और बड़ा आनंद होता है। उस आनंद और आश्चर्य के बीच के माँ अपने आप को भूल जाता है कि कहाँ मैं और कहाँ भगवान। जब भगवान एकदम प्रकट हो जाते हैं उस समय के बीच के माँ उसके नेत्रों की पलक नहीं लगती क्योंकि वो देखता ही रहता है, पलक मारने तक भी वो वियोग नहीं सहन सकता। भगवान जी एक तक देखते हैं और वो भक्त जी एक तक देखता रहता है। उस समय के बीच के माँ इतना आनंद इतनी शांति होती है कि अपने आप का ज्ञान नहीं रह करके और भगवान का ही ज्ञान रहता है। और फिर थोड़ी देर के बाद जब होश आता है तो एकदम मुग्ध हो जाता है। उस समय के बीच के माँ वह सारे भावों से उड़ जाता है। वहाँ इतना प्रेम होता है कि न तो वहाँ कोई लज्जा है, न भय है और न संकोच है और न आदर है, न सत्कार है, न स्तुति न प्रार्थना। जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो अब किस लिए स्तुति और प्रार्थना की जावे, क्यों की जाए, किसके लिए की जावे। और उद्यान के बीच में तो दोनों एक ही हो जाते हैं, भगवान प्रेमास्पद और भक्त प्रेमी, प्रेमी और प्रेमास्पद और प्रेम स्वरूप से अलग अलग होते हुए भी धातु से एक ही है, जाति से एक ही है, सभी चिन्मय है, सभी आनंदमय है, मानो साक्षात प्रेम नहीं आपने मूर्ति धारण की हो। प्रेम ही मानो तीन भागों के माँ बढ़ करके प्रेम जो है प्रेमास्पद में और प्रेमी और प्रेम के माँ विभक्त होया हो। वहाँ माने बिल्कुल ही लज्जा नहीं, जैसे पति पत्नी के परस्पर में कोई लज्जा नहीं रहती, इस प्रकार से वहाँ कोई लज्जा नहीं और भय भी नहीं। जैसे दास जो है ये अपने सावधान रहता है, भय करता है, किंतु वहाँ सब भावों से उड़ जाता है, इसलिए वहाँ कोई अपने भय नहीं। और वहाँ जैसे पत्नी पति पत्नी भी परस्पर के बीच के वहाँ कायदा रखते हैं और स्त्री भी जो है आदर करती है अपने पति का, यहाँ न कोई आदर है, न कोई सत्कार है, न कोई छोटा, न कोई बड़ा, सभी एक समान है। यहाँ सभी भाव के अंतर्गत है और सभी भावों से ऊपर की स्थिति है। जब भगवान प्राप्त हो जाते हैं तो कुछ भी बाकी नहीं रहता। इस प्रकार से भगवान के प्रेम में मुग्ध होकर के बस वो एकदम तन्मय हो जाता है और फिर भगवान का नित्य संयोग हो जाता है। इसके बाद भगवान के साथ भगवान के परम धाम को चला जाता है और सदा नित्य उस धाम में बात करता है। और वो भगवान का परम धाम है, वो चिन्मय है, वो ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, बोध स्वरूप है,